नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये 1976 का एक विशेष उद्बोधन है जिसका शीर्षक है भावी महाभारत, और इसे दिया था पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी ने शांति कुंज में अपने वरिष्ठ सहयोगियों के सामने।
जी,
इसका जो मूल विचार है वो है युग परिवर्तन, मतलब एक तरह से युग निर्माण की पूरी कार्य पद्धति, और पूज्य गुरुदेव ने इसे तीन हिस्सों में समझाया था।
हाँ,
ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है बल्कि समाज में एक बड़े बदलाव की तैयारी, एक वैचारिक क्रांति की बात है जिसे उन्होंने महाभारत का नाम दिया एक प्रतीक के तौर पर। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं।
बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है जैसा आपने कहा कि पूज्य गुरुदेव का महाभारत से मतलब कोई वो तोपों या तलवारों का युद्ध नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचारों का, मूल्यों का और जो समाज में अनीति फैली है उसके विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष का आह्वान था। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब एक तीन चरणीय योजना सामने रखी। हाँ, तो पहला चरण क्या था? वो था ज्ञान यज्ञ।
जी,
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि किसी भी बदलाव से पहले सबसे पहले विचारों की जो विकृति है उसे दूर करना जरूरी है। गलत सोच को सही दिशा देना, पुरानी अविवेकी मान्यताओं को हटाना और उनकी जगह तर्कसंगत, बुद्धिसंगत विचार स्थापित करना, क्योंकि भाई जब तक सोच सही नहीं होगी तो कर्म सही दिशा में कैसे होंगे।
एकदम सही बात। देखिए, यहाँ मूल बात है चिंतन की शैली का परिष्कार, मतलब सोचने के ढंग को सुधारना। जब तक विचार स्पष्ट और सही नहीं होंगे तब तक तो व्यक्ति दिग्भ्रमित ही रहेगा, है ना? और समाज को भटकाने वाली जो ताकतें हैं उनका शिकार होता रहेगा।
बिल्कुल।
तो ज्ञान ही कर्म का आधार है।
बिल्कुल,
ये पहला कदम है।
बिल्कुल, और ज्ञान के बाद फिर आता है कर्म, तो दूसरा चरण जिसे पूज्य गुरुदेव ने कहा रचनात्मक कार्य।
हाँ, रचनात्मक कार्य।
उनका कहना था कि ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित न रहे, मतलब हम जिस समाज में, धर्म में, संस्कृति में, जिस विश्व में रह रहे हैं उसके लिए कुछ करें, सेवा करें। इसके लिए उन्होंने समय और धन दोनों का अंशदान लोक मंगल के लिए जरूरी बताया। शुरुआत में कहा कि भाई रोज 1 घंटा और 10 पैसा, फिर क्षमता बढ़े तो कम से कम 4 घंटे और अपनी एक दिन की आय।
और ये आप देखिए, ये परिपक्वता की कसौटी है। जब ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रहता, वो दिल में उतरता है, संवेदना और विश्वास बनता है, तभी तो व्यक्ति सेवा और त्याग के लिए आगे आता है ना।
सही बात है,
सेवा ही पूजा का एक अभिन्न अंग है। बिना कर्म के वो कोरा ज्ञान या विश्वास वो टिकाऊ नहीं होता, वो तो बस हवा में खो जाता है।
हाँ, हवा में उड़ जाता है।
हाँ, तो रचनात्मक कार्य जरूरी है।
और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण चरण, संघर्ष।
जी, संघर्ष।
पूज्य गुरुदेव ये मानते थे कि समाज में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व होते हैं जिनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं या वो बस अपनी जड़ता में फंसे होते हैं। वो केवल समझाने बुझाने या अच्छे रचनात्मक कार्यों से नहीं बदलते, उनसे निपटना पड़ता है।
पूज्य गुरुदेव ने फिर से स्पष्ट किया कि ये हथियारों का युद्ध नहीं है, बल्कि हर विचारशील व्यक्ति का अविवेकी व्यक्ति या अविवेकी व्यवस्था के साथ जूझना है। ये उस नए युग को लाने के लिए जरूरी एक वैचारिक महायुद्ध है, आप कह सकती हैं।
अच्छा, लेकिन इसके तरीके क्या हैं? ये संघर्ष होगा कैसे?
पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत बताई असहयोग से, मतलब गलत का साथ ना देना।
हाँ, असहयोग,
गलत को गलत कहने का साहस रखना। उनका मानना था कि कायरता ही है जो समाज में पाप को बढ़ाती है।
बिल्कुल, और असहयोग के बाद अगला कदम है विरोध, यानी अन्यायपूर्ण बातों या आज्ञाओं का उल्लंघन करना, उनको मानने से इनकार कर देना।
जैसे?
जैसे उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु की गलत बात नहीं मानी, भरत ने माँ कैकेयी की बात ठुकरा दी, विभीषण ने भाई रावण की अनीति का साथ नहीं दिया। ये सब उदाहरण बताते हैं कि धर्म और न्याय जो है वो व्यक्ति से, रिश्ते से बड़े हैं।
सही, पूज्य गुरुदेव ने तो सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज है, ऊंच नीच का भेदभाव, पशु बलि है या धर्म के नाम पर जो विलासिता होती है, इन सब के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने घेराव जैसे अहिंसक दबाव के तरीकों का भी जिक्र किया था।
हाँ, किया था,
ताकि अन्यायपूर्ण कामों को सामूहिक रूप से रोका जा सके।
जी, और इस संघर्ष को संगठित रूप देने के लिए उन्होंने एक लोक वाहिनी या युग सेना की आवश्यकता भी बताई। ये ऐसे निडर लोगों का समूह होगा जो अन्याय का मुकाबला करेगा, भले ही इसके लिए मौजूदा कानून तोड़ना पड़े या जेल जाना पड़े।
अरे
हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि न्याय जो है वो किसी भी मानव निर्मित कानून से ऊपर है।
ये सेना भ्रष्टाचारियों से, मिलावटखोरों से, समाज को दूषित करने वाले साहित्यकारों या कलाकारों तक से मतलब वैचारिक रूप से लोहा लेगी।
तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, पूज्य गुरुदेव का जो भावी महाभारत का दृष्टिकोण है वो तीन चरणों वाला है।
पहला, ज्ञान यज्ञ से विचारों का परिष्कार।
हाँ।
दूसरा, रचनात्मक कार्यों से सेवा और समर्पण।
जी।
और अंततः अनीति के विरुद्ध अनिवार्य संघर्ष।
बिल्कुल। और ये दृष्टि, जैसा पूज्य गुरुदेव कहते थे, केवल भारत के लिए नहीं थी, बल्कि एक विश्वव्यापी भारत, मतलब एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना का आह्वान था। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इस वैचारिक संघर्ष के मोर्चे कहाँ कहाँ खुले हैं, और उनमें एक व्यक्ति और समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये विचार करने योग्य प्रश्न है।
सही कहा, बहुत गहरा विचार है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।